खुदावन के मुकद्दस और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। सो इससे पहले कि हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सुने, सो आए हम जैसे हमने जबूर 32 में से गाया, खुदावन चाहता है कि वो हमें सिखाए, खुदावन चाहता है कि वो हमारे रास्तों को दुरुस्त करे, खुदावन चाहता है कि हम उसकी राहों पर चलें, उसकी आवाज़ को सुने। सो आए हम सब खुदा के हुजूर झुकें और उसके पाक रूह की कुदरत को, रहनुमाई को और उसकी अकल और बनाई मांगेंगे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, आज की दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए, सारी रात की हिफाजत और निगहबानी के लिए, और ख़ासकर खुदा बाप आज के कलाम के लिए। आज के कलाम के हिस्सा में हम सबको खुदा खुदा बड़ी बरकत दे, और ना सिर्फ के सुनने वाले बल्कि तेरे जिंदा कलाम को कबूल करके उस पर अमल करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से इफिसियों 2 बाब उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जो बहन भाई पढ़ सकते हैं वो इस हवाला को निकालें। ये आपको नए अहदनामा में इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, आज का हवाला 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि इस हवाला को पढ़ें, जैसे कि आज के दौर में और बहुत दफ़ा नौजवानों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से, लोगों से, जो मसीही लोग हैं, जो मसीह का नाम अपने नाम के साथ रखते हैं, उन सब से बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है कि आपका कलमा क्या है। तो आज इस दिलचस्प बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत से खुदावन खुदा के नाम हैं, लेकिन सादा सा जो जवाब है इस सवाल का, वो हम कह सकते हैं यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं इब्तदा में कलमा था और वो कलमा खुदावंद यीशु मसीह था, और वो यीशु मसीह अबद ही से खुदा के साथ था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कलमा क्या, तो आप सादा अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह वो खुदा का कलाम, वो कलमा है जिसके वसीला से हर एक चीज़ वजूद में आई, जिसके वसीला से आज हम मसीह का बदन कहलाते हैं। ये बात थी, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सो आए हम देखें कि खुदा का बंदा पालूस रसूल हमें क्या सिखाना चाहता है। खुदा का पाक रूह उम्मीद है आज हम सब की तरबियत और नसीहत के लिए बहुत सी बातें सिखाना चाहता है। इफिसियों 2 बाब उसकी 19वीं आयत, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक अमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। इससे पहले कि हम आज 20वीं आयत को सीखें, 19वीं आयत पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। पालूस कहता है, पास अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, जो इस बात की तरफ इशारा है कि हमने जो बात सीखी थी कि यीशु मसीह के बगैर हम इस दुनिया में क्या थे, गुमराह थे, इस दुनिया में परदेसी थे, हमारा कोई ठिकाना नहीं था, हम सब इस दुनिया में क्या थे, अनजानों की तरह, अजनबियों की तरह चलते फिर रहे थे, हमारा कोई वतन नहीं था, हमारा हमारी कोई मंजिल नहीं थी। सो पालूस रसूल उस वक्त के लोगों को जो इफिसस शहर में रहते थे, जो बुतपरस्त थे, जो ऐसे लोग थे बहुत ज्यादा इलम रखते थे, जिन्हें कह सकते हैं कि गैर कौम, जिनमें यूनानी लोग भी शामिल थे, और यूनानी लोग इलम में बहुत ज्यादा मशहूर और बहुत ज्यादा इलम रखने वाले लोग थे। तो पालूस रसूल यहाँ पर उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया कहता है कि अब तुम परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। क्यों लिखा है? बल्कि मुकदसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। हमने ये बात सीखी थी कि यीशु मसीह पर जैसे ही हमने ईमान लाया, यीशु मसीह पर जैसे उन लोगों ने ईमान रखा, तो वो परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि उन्हें एक मंजिल, एक मकाम, एक रहने की जगह की क्या हो गई? उम्मीद हो गई। और वो क्या है? मुकदसों के हम वतन। हमने सीखा था कि मुकदसों से मुराद यानी के पाक लोग, वो लोग जो यीशु मसीह के खून से खरीदे गए, वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह के कफारे को कबूल किया, जिसे कलीसिया कहा गया है, जिसमें आप सब शामिल हैं। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, बाइबल मुकद्दस आपको मुकद्दसीन कहती है। मुकद्दसीन से मुराद यानी कि वो लोग जो मुकम्मल तौर पर पाक, बेऐब, गुनाह से धुले हुए लोग। बेशक हम हर रोज बातों में, सोचों में, ख्यालों में, खाने पीने में, उठने बैठने में, कारोबार में बेईमानी करते हैं, बुरी बातें कहते हैं, बुरे ख्याल सोचते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा जब पालूस कहता है कि मुकद्दसों के हम वतन, तो वो कहता है उन पाक लोगों के तुम हम वतन, उन पाक लोगों के तुम साथी बन गए हो जो आसमान पर खुदा की हजूरी में रहते हैं। मुकद्दसीन पाक लोगों को कहा गया है हम वतन यानी के एक जगह के रहने वाले। जैसे आपको आपका बहुत दफा कहते हैं कि जो अगर इंडिया में रहते हैं तो उसका वतन क्या होगा? वो उसका वतन इंडिया है, मुल्क इंडिया है। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? कि हमारा वतन पाकिस्तानी है, हमारा वतन पाकिस्तान है। जो किसी और मुल्क में रहते हैं उनको क्या कहा जाएगा कि उनका मुल्क क्या है? अफ्रीका है, अमेरिका है, लंदन है। तो वैसे ही पालूस कहता है कि मुकद्दसों के हम वतन, और हमारा वतन कहाँ पर है? आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ, हमारा वतन क्या है? आसमान पर है। कहाँ पर है? आसमान पर। और हम सब जैसे उस दौर में इब्राहिम, इजहाक, याकूब और दूसरे तमाम ईमानदार इस जमीन पर मुसाफिरों की तरह चलते फिरते रहे, इस बात पर उम्मीद रखते हुए कि एक दिन आएगा कि वो उस अपने वतन में जाएंगे जो खुदा ने मुल्क उनके लिए तैयार किया। तो पालूस रसूल इस बात को वाजिया करते हुए कहता है कुलसियों 3 बाप उसकी 20वीं आयत में, फिलिपियों 3 बाप, माफ़ चाहता हूँ, फिलिपियों 3 बाप उसकी 20वीं आयत में पालूस रसूल फरमाता है और कहता है हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। सो ये मसीहियों का वतन है आसमान। आसमान किसको कहा गया है? यानी कि खुदा का तख्त जहाँ पर है, खुदा की हजूरी, जहाँ पर खुदा अपने लोगों को रहने के लिए जगह देगा, ऐसी जगह जो गुनाह से पाक होगी, ऐसी जगह जहाँ पर कभी अंधेरा नहीं होगा, जहाँ पर आपको बिजली का मसला नहीं होगा, पानी का मसला नहीं होगा, कर्जा उठाने का, कर्जा उतारने का मसला नहीं होगा, झूठ का मसला नहीं होगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े का मसला नहीं होगा, बेईमानी का मसला नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, वहाँ पर खुशहाली, सुख और अबदी सुकून होगा। तो ये वो वतन है मुकद्दसों का, ईमानदारों का, सिर्फ ईमानदारों का, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। और हमने दूसरी बात सीखी थी, खुदा के घराने के लोग, खुदा के घराने के लोग हो गए, यानी कि वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखने के बायस उनकी सकूनतगाह खुदा की हजूरी में है। बेशक हम इस जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन आसमान पर एक दुनिया है जो पाक लोग बहुत दफा जो मसीही मसीह के नाम की खातर कत्ल या आग में या दूसरी मुश्किलात में से गुजरते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं? आसमान पर। आसमान पर, जिसकी तस्वीर हम देख सकते हैं उस गरीब लाजर की मिसाल में, जो फोड़ों से, नासूरों से भरा हुआ था, और उस अमीर शख्स की मिसाल में, कि वो गरीब लाजर कहाँ पर था? इब्राहिम की गोद में, जो इस बात की तस्वीर है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है खुदा की हजूरी। तो इसके बारे में पालूस रसूल कहता है कि खुदा के घराने के लोग हो गए, यानी कि वो लोग जो खुदा के कहलाते हैं, खुदा का खानदान। हम क्या हैं? खुदा का खानदान, वो लोग जो खुदा के हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं। इसके बारे में पालूस कहता है इफिसियों 3 बाप उसकी 14 आयत। इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 3 बाप 14 आयत में कहता है, इसी सबब से मैं, पालूस कहता है, इसी सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ, यानी कि मैं उसके हजूर झुकता दुआ करता हूँ जो आसमान और जमीन का खालक है, जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। जैसे जमीन पर हर एक खानदान को हम जानते हैं कि ये भाई शरीफ का खानदान है, ये भाई अमीन का खानदान है, ये भाई मुबारक का खानदान है, ये भाई सैमुअल का खानदान है। जैसे जमीन पर, पालूस कहता है, जिस तरह आसमान और जमीन का हर एक खानदान किसी ना किसी से उसका नाम जुड़ा हुआ है, आसमान पर भी ऐसे ही है, आसमान पर भी ऐसे ही है। आसमान पर वो लोग होंगे जिनके नाम के साथ खुदा का नाम जुड़ा होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? खुदा के घराने के लोग। इस जमीन पर जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? अबलीस और शैतान के लोग। खुदा के घराने के लोगों को इत्मीनान मिलेगा, हमेशा की जिंदगी, और वो अजीब अजीब तोहफे और नेमतें मिलेंगी। लेकिन जो खुदा के घराने के लोग नहीं हैं, उन्हें रोना, दांतों का पीसना, आग आग की भट्टी, और फिर हमेशा की दोजख मिलेगी। तो पालूस कहता है, जिस तरह जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, वो बात कर रहा है ईमानदारों की। कितनी दिलचस्प बात है कि आपके नाम के साथ क्या लिखा जाता है, हुकूमत के रजिस्टर में आपके शिनाख्ती कार्ड पर क्या लिखा जाता है? आखिरी नाम क्रिस मसीह, या हमारे बाप का नाम, या कोई और, लेकिन खास तौर पर लिखा जाता है बहुत दफा मसीह, यानी कि हम उसके मुत्तहद हैं, हम उसके नामजद हैं। जैसे खामंद का नाम उसकी बीवी के शनाख्ती कार्ड पर लिखा जाता है, क्योंकि उसकी बीवी उसके ना उसके मुत्तहद है, उसकी है, वैसे ही मसीह के खानदान के नाम खुदा के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, हम याद रखें, इनसे सीखें। मकसों के हम वतन, यानी के आसमान पर हमारा वतन है, इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं, इसलिए इस दुनिया की चीज़ों के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारनी। इस दुनिया की चीज़ों में क्या है? हसद, बोगस, लड़ाई, झगड़ा, शहवत परस्ती। इसीलिए पालूस कहता है, मेरे साथ एक हवाला निकालें, कुलसियों उसका तीन बाप उसकी पहली आयत से। कुलसियों तीन बाप उसकी पहली आयत, पालूस कहता है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, यानी कि जिंदा किए गए, नई पैदाइश हासिल हुई, तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, यानी कि आसमान की तरफ तकते रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना के जमीन पर की चीजों के, ना के जमीन पर की चीजों के। तो हमें इस जमीन पर रहते हुए आसमानी हिकमत को, आसमानी कुवत को, आसमानी जोर को, आसमानी इत्मीनान को इस्तेमाल करने की जरूरत है, ना कि इस दुनिया को, ना कि इस दुनिया की ताकत को, ना कि इस दुनिया की ख्वाहिशों, ना कि जिंदगी की शेखी, ना कि दुनिया की बातों में मगन होना है। इस जमीन पर रहते हुए हमें आसमान की तरफ तकते रहने की जरूरत है। तो अगली आयत में हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा के घराने के लोग होते हुए हमारी बुनियाद क्या है, इस जमीन पर रहते हुए हमें किस बुनियाद की तरफ इशारा करने की जरूरत है। इसलिए मसीही लोग इस दुनिया में सबसे मुबारक लोग हैं, बाबरकत लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के अजीम लोग, भटकते हुए लोग नहीं, बल्कि जिनको खुदा ने तलाश किया है, ना उम्मीद नहीं बल्कि उम्मीद रखने वाले लोग, मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा, झूठ के नहीं बल्कि सच के मानने वाले। इसलिए आप सबको, ना के पादरी साहब की ये खिदमत है कि वो लोगों को बताएं, आप सब पर ये बड़ा बोझ है, आप सब पर खुदा की तरफ से ये चुनाव है कि जाओ और सब कौमों को जाकर इस बात के बारे में बताओ कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखेगा वो खुदा के घराने का बेटी और बेटा बन जाएगा, उसे हमेशा की आग में जलना नहीं होगा बल्कि हमेशा का सुकून और इत्मीनान मिलेगा। इसलिए शुरू कहाँ से करने की जरूरत है? इस कलोनी से, इस कलोनी से, अपने अपने खानदान से, अपने अपने खानदान से, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, अपने शिगिर्दों से कहा था, पहले यरूशलम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर दुनिया की हदों तक। इसलिए सबसे पहले खुदा हमसे पूछेगा कि हमने अपने घर वालों को मसीह के बारे में बताया या नहीं, हमने मसीह की मोहब्बत उस पर अपने घर वालों पर जाहिर की या नहीं, क्योंकि आज मसीही जो नामी मसीही हैं, बहुत दफ़ा जादूगरी में, बुत परस्ती में, कब्रों को औथात के बनाए हुए बुतों को मानते हैं, ना कि जिंदा खुदा को। इसलिए ये खुदा की नज़र में गुनाह है और आपको बताने की ज़रूरत है। अगर आप इस किसी के आप अगर आप किसी इस किस्म के गुनाह में शामिल हैं, बुत परस्ती में, जादू में, तवीज़ धागा में या किसी और चीज़ पर, तो याद रखें आप खुदा के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं, आप बरकत नहीं पाएंगे बल्कि नुकसान उठाएंगे। बरकत देने वाला खुदावंद है। इसलिए पालूस रसूल कहता है बरकत का मंबा यीशु मसीह है। मूसा कहता है कि मैंने बरकत और लानत को तुम्हारे आगे रख दिया, अब तुम्हारा खुद का फैसला है कि क्या चुनाव करते हो। यशवा ने लोगों के सामने कहा कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे, अब तुम चुन लो कि तुम किस खुदा की परस्तिश करोगे। तो लोगों ने कहा कि हम जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे। तो उस खुदा को कभी ना भूलें जिसने आपको जिंदगी की सांसें दी। खुदा वाहद एक है और वो यीशु मसीह में जाहिर हुआ है, कोई और खुदा नहीं। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज के पैगाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे, सबके साथ हो, सबको इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।